नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 हेली सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा को बृहद स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाया और चंपावत जिले में महिला समूहों द्वारा बनाए गए हर्बल रंगों की बढ़ रही मांग। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जयवीर सिंह, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में 4 हेली सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी तथा हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत शुरू की जा रही इन हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक यहां और भी आसानी से पहुंच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने हेली सेवाओं के शुभारंभ अवसर पर यात्रा करने वाले लोगों से वर्चुअली माध्यम से बातचीत भी की। गौरतलब है कि देहरादून से मसूरी की हेली सेवा उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के तहत संचालित की जा रही है, जबकि शेष 3 हेली सेवाएं केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत संचालित की जा रही हैं। देहरादून मसूरी के बीच 5 सीटर जबकि शेष जगहों के लिए 7 सीटर हेलीकॉप्टर सेवाएं देंगे। देहरादून से बागेश्वर, नैनीताल और हल्द्वानी से बागेश्वर की हेली सेवा सप्ताह में 7 दिन में 2 बार संचालित होंगी, जबकि मसूरी से देहरादून हेली सेवा पहले माह में प्रतिदिन 1 उड़ान भरेगी। वहीं बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील के मेला डुंगरी गरुड़ स्थित हेलीपैड पर देहरादून से आए पहले यात्रियों के जत्थे और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से बागेश्वर के लोगों को काफी सुविधा होगी।
बहुत लंबे समय से बागेश्वर जनपद की आम जनता की मांग थी कि बागेश्वर में जब कभी वीवीआईपी आते थे तभी हेलीकॉप्टर देखने को मिलते थे। आज भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हमारे मेली डुंगरा बागेश्वर के ऐतिहासिक स्थान पर लगातार हल्द्वानी के लिए भी सेवा दी जाएगी, देहरादून के लिए भी सेवा दी जाएगी। एक एक नहीं, दो दो हेलीकॉप्टर यहाँ चलने वाले हैं। और जो बहुत मैं कहूंगा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते थे और गाड़ी के लिए यहाँ से हल्द्वानी जाना या हम लोगों को ही यहाँ से देहरादून जाने में 14-15 घंटे का जो समय लगता था, आज वो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा को बृहद स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। वे आज देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन एवं नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां और समाधान विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति लागू करने के साथ ही वर्ष 2027 तक 1400 मेगावाट सोलर क्षमता पाने की दिशा में काम कर रही है।
आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीपी यानी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स तैयार करके जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण योगदानों का आकलन करने का भी एक प्रयास किया है, इसकी हमने शुरुआत की है। वहीं दूसरी ओर हम जीवाश्म आधारित ईंधन के स्थान पर ग्रीन ऊर्जा को बृहद स्तर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदेश में हम सौर ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से नई सौर ऊर्जा नीति लागू करने के साथ ही वर्ष 2027 तक 1400 मेगावाट सोलर क्षमता पाने की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं। हमने इस बार के जो हमारा आम बजट था उस बजट में इसका प्रावधान किया है।
मणिपुर के टेक्नोपाल जिले के बच्चों ने राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राजभवन में आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। यह यात्रा असम राइफल्स ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित की गई, जिसमें टेक्नोपाल के 4 शिक्षकों के साथ 28 छात्र छात्राएं शामिल हैं। पहली बार अपने क्षेत्र से बाहर निकले ये बच्चे इस यात्रा के दौरान भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान आदि का भ्रमण करेंगे, जिससे उन्हें उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए भारत की एकता, अखंडता और विविधता पर जोर दिया और उन्हें इस यात्रा से प्राप्त अनुभवों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा दी। केंद्र सरकार ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। पहले यह प्रावधान इस वर्ष मार्च के अंत तक के लिए लागू था। इस पहल से घरेलू बाजार में उड़द की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। म्यांमार भारत को उड़द निर्यात करने वाला मुख्य देश है। चंपावत जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित महिला समूह होली के हर्बल रंग बना रही हैं। जिले की परियोजना महानिदेशक विम्मी जोशी ने बताया कि फल, फूलों और पत्तियों से बनाए गए ये प्राकृतिक रंग शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।
जनपद चंपावत में हमारे लगभग 2100 समूह हैं जो कि विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं। विभिन्न जो हमारे त्योहार होते हैं उनमें भी हमारी जो महिलाएं हैं वो लोकली जो है उत्पाद तैयार करती हैं। जैसे अभी होली का त्योहार आ रहा है तो उसमें कलर्स बनाए जा रहे हैं। जो हमारी महिलाएं कलर्स तैयार करती हैं उसका विशेष तौर पर जो उनकी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वे नेचुरल प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। जैसे इसमें जो मुल्तानी मिट्टी है उसको यूज कर रहे हैं, जैसे बुरांश के फूल हैं उनका कलर यूज कर, इसी तरह से गुलाब के कलर्स यूज करते हैं और जो फूड कलर्स होते हैं उनको यूज करके आटे से या जो अरारोट होता है उससे जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं उनको बनाया जाता है ताकि वो स्किन पर सेफ रहें और लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो।
चंपावत जिले के विभिन्न स्थानों पर समूह की महिलाएं राज्य पुष्प, बुरांश, हल्दी, गेंदा, पालक और चुकंदर से प्राकृतिक रंग तैयार कर रही हैं। इन रंगों को स्टॉलों के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से बेचा जा रहा है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इनकी मांग बढ़ रही है। इससे महिला समूहों की आजीविका में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजभवन में आज होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रथम महिला गुरमीत कौर शामिल हुई और सभी महिलाओं को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रंगों की बहार और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान पारंपरिक होली गीतों और लोक नृत्यों ने वातावरण को विशेष बना दिया। प्रदेश के उच्च और मध्य हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के रोपण को लेकर वन प्रभागों की कार्ययोजनाओं में अब अलग से संस्तुति की जा रही है। मुख्य वन संरक्षक कार्ययोजना संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि वन विभाग की ओर से हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार बुरांश प्रजाति के वृक्षों के अलावा झाड़ी प्रजातियों के हिसालू, घिंगारू और किलमोड़ा पर पक्षियों की कई प्रजातियां अपने भोजन, परागण और घोंसला बनाने के लिए निर्भर रहती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों में अब इन वनस्पति प्रजातियों का रोपण किया जाएगा ताकि राज्य में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों का संवर्धन और संरक्षण किया जा सके।
देश में सबसे ज्यादा पक्षी प्रजाति पाए जाने वाले राज्यों में से एक राज्य है उत्तराखंड। तो यहाँ पे विभिन्न वन प्रभागों की जो कार्य योजनाएं बनती हैं उनमें जो पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे राज्य में, खासकर मध्य हिमालय और उच्च हिमालय क्षेत्रों में, उनके संरक्षण के लिए हम लोगों ने पिछले काफी समय से हम लोग एक अध्ययन और शोध कर रहे थे कि कौन सी ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनके ऊपर ये पक्षी प्रजातियां निर्भर करती हैं, ताकि इन वनस्पतियों के रोपण और उनके संरक्षण के लिए इन कार्य योजनाओं में अलग से संस्तुति की जा सके। इससे जो ये प्रभाग है उनमें इन वनस्पति प्रजातियों का रोपण होगा और इससे जो है जो पक्षी प्रजातियां हैं जो इनके ऊपर भोजन और नेक्टर परागकणों के लिए निर्भर करती हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और उनका संवर्धन होगा।
हरिद्वार से हाई प्रोफाइल ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह का निजी सचिव बनकर लोगों से ठगी की कोशिश करने के एक शातिर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से फर्जी आईडी कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 हेली सेवाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा के बृहद स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र ने उड़द दाल के शुल्क मुक्त आयात को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाया और चंपावत जिले में महिला समूहों द्वारा बनाए गए हर्बल रंगों की बढ़ रही मांग। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।